11 जुलाई दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फतल। कश्मीर में आज भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई में और लोगों के मरने की खबरें। आज से शुरू हो रही डॉक्टरों और अस्पतालों के सच पर खास सीरीज में देखेंगे क्यों बढ़ रहे हैं डॉक्टरी चूक के मामले।
मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, मेरे होश उड़ गए जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी हमने ये निकाल दिए हैं, दोनों ओवरीज निकाल दिए हैं और यूट्रस भी निकाल दिया है। ओवरीज के बारे में मुझे पता ही नहीं था क्या चीज होती है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों से बातचीत कर शांति बहाली में मदद की अपील की है। शुक्रवार से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और अलगाववादियों ने 13 जुलाई तक बंद का आह्वान किया है, जिससे कश्मीर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच अमरनाथ यात्रा 2 दिन के बाद आज दोबारा शुरू कर दी गई है। दक्षिण सूडान में उपराष्ट्रपति रेक मचार और राष्ट्रपति साल्वा कीर के समर्थक सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। राजधानी जुबा में एक पत्रकार ने बताया कि उपराष्ट्रपति रेक मचार के घर पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। सड़कों पर सेना के टैंक भी देखे गए हैं। लड़ाई के बीच गिरजाघरों में कई लोगों को शरण दी गई है। करीब 5 दिन से जारी लड़ाई में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इनमें आम लोग भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अन्य देशों को दक्षिण सूडान में अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा करना पड़ सकता है। जापान के संसदीय चुनाव में ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि वो देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए एक बड़ा पैकेज दे सकते हैं। ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने के बाद अब वो जापान के शांतिवादी संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह करवा सकते हैं। चुनाव में जीत के बाद उन्होंने कहा कि जापान के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर ज्यादा खर्च करना उनकी प्राथमिकता होगा।
मैं आर्थिक मामलों के मंत्री इशिहारा से कल कहूंगा कि वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक पैकेज तैयार करें। हम बुलेट ट्रेन के निर्माण में तेजी लाएंगे। ये थे शिंजो आबे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया में काफी दिक्कतें पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब अनुच्छेद 50 को लागू करेंगे तभी यूरोपीय संघ से बाहर होने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो पाएगी। इस बीच ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता की दौड़ से आंद्रेया लिडसम हट गई हैं। अब पार्टी की नेता और देश की अगली प्रधानमंत्री के तौर पर ब्रिटेन की गृह मंत्री टेरिजा मे के नाम की पुष्टि होने की संभावना है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने कहा है कि उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से संवाद नहीं करेगा। समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका को जानकारी दी है कि अब सभी मुद्दों पर बातचीत युद्ध संबंधी कानून के तहत होगी। इनमें उत्तर कोरिया में हिरासत में लिए गए 2 अमरीकी नागरिकों का मुद्दा भी शामिल है। समाचार एजेंसी ने बताया कि ये फैसला अमरीका के उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को ब्लैकलिस्ट करने के बाद किया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर में जारी हिंसक प्रदर्शनों के दौरान शुक्रवार से पुलिस कार्रवाई में पुलिसकर्मी समेत 30 नागरिक मारे गए हैं। घाटी में बंद और कर्फ्यू के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज भी प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से गोलीबारी में कई लोगों के मरने की खबर है। प्रदर्शन की लहर शुक्रवार को उस समय फैली जब चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की 2 साथियों समेत एक मुठभेड़ में मौत हो गई। इस बीच चरमपंथियों ने प्रशासन के साथ बातचीत की पेशकश रद्द कर दी है और बुधवार तक बंद का आह्वान किया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
तीन दिन से लगातार कर्फ्यू, मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी और अर्धसैनिक बलों की कथित ज्यादतियों के कारण घाटी में शांति बहाली के प्रयास विफल हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आज भी जब कई लाशों को दक्षिणी कश्मीर पहुंचाया गया तो वहां लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किए, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में और लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या 30 हो गई है, जबकि घाटी के अस्पताल घायल लोगों से भरे पड़े हैं। आज भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपोजिशन नेता सोनिया गांधी और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को फोन किया और शांति बहाली के प्रयासों में इनका सहयोग मांगा। कश्मीर की सरकार ने भी पहले ही अलगाववादियों से अपील की है कि शांति बहाल करने में वो अपना योगदान दें। अलगाववादियों ने एक साझे बयान में बातचीत या सहयोग की अपील को रद्द करते हुए कहा है कि हालात को खराब करने में सरकारी फोर्सेज की भूमिका है और जब तक फोर्सेज को लगाम नहीं दी जाती तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि फोर्सेज भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं बल्कि कश्मीरियों की हत्या करने के लिए फायरिंग करती है।
ये एक मैं कहूंगा कि रियासती दहशतगर्दी का एक बदतरीन मुजाहरा हुकूमत इस वक्त कर रही है और अफसोस की बात तो यह है कि अगर आप देखें जो मैक्सिमम इंजरीज हुई हैं, जो मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं, या तो सरों पर गोलियां लगी हैं या तो सीनों पर गोलियां लगी हैं, कोई क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म इन्होंने इख्तियार नहीं किया है। ये जो है वो नॉन लीथल वेपन्स इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन वो भी नहीं किए गए। सीधा जो एक मकसद इनका रहा है वो शूट टू किल रहा है।
अलगाववादियों ने कश्मीर में 13 जुलाई तक बंद की अपील की है। कर्फ्यू और बंद के कारण घाटी में कठिन स्थिति पैदा हो गई है। पर्यटकों को कश्मीर से निकालने के लिए सरकार ने कई गाड़ियों को काम पर लगाया है। इस बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम और गांधरबल के सोनमर्ग में पहुंचे 2500 यात्रियों को जम्मू रवाना किया गया और आज भी सैकड़ों यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। गौरतलब है कि शुक्रवार को चरमपंथी कमांडर बुरहान की मौत के बाद दक्षिणी कश्मीर के सभी 4 जिलों में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे जो अब भी जारी हैं। श्रीनगर और अन्य जिलों में भी तनाव है। बुरहान वानी 2010 में 15 वर्ष की उम्र में रोपोश हो गए और बाद में फेसबुक पर हथियार थामे अपनी और अपने साथियों की तस्वीरें पोस्ट करके भारत विरोधी भावनाओं के प्रतीक बन गए। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सह संपादक सुशांत सिंह से बात की और पूछा कि इस पूरे मामले को हैंडल करने में सरकार से कहां चूक हुई।
गवर्नमेंट से चूक तो ये समझने में हुई कि जब वानी की एनकाउंटर में डेथ हुई उसके बाद जो उन्होंने डेड बॉडी उसकी हैंडओवर की और जो उसके लास्ट राइट्स हुए, जनाजा निकला और उनके लास्ट राइट्स हुए, उस वक्त इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया कि इस तरह की समस्या होगी और इतनी ज्यादा पब्लिक बाहर आएगी और इतना ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिलेगा पूरी कश्मीर वैली में। यहीं पर शायद बहुत बड़ी चूक हुई सरकार से।
अब आपकी नजर में इसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए क्या करे सरकार?
देखिए साहब, इस वक्त तो हालत बहुत नाजुक है और बहुत खराब है। इस वक्त तो शायद क्योंकि टेम्पर्स बहुत हाई हैं, जनता बहुत गुस्से में है, ऐसा तो शायद कोई इमीडिएट आंसर तो कुछ नहीं है जिससे कि आप लोगों को काबू कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये है कि आपके जो अभी 21-23 लोग या 25 लोग जितने भी लोग मरे हैं, इनोसेंट लोग मरे हैं, उनके परिवार वालों को आप कॉम्पेंसेशन दें, उनको सांत्वना दें, जो मुख्यमंत्री हैं और जो अलग पॉलिटिकल लीडर हैं वो जाके उनको मिलें और लोगों को समझाएं कि साहब सड़क पर ना आए और इस तरह से प्रोटेस्ट ना करें, और जो पुलिस है और जो CRPF है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनको भी बोलें कि साहब थोड़ा सा कंट्रोल करें, संयम बरतें और लोगों पर गोलियां ना चलाएं।
ये बताइए सुशांत, क्या कश्मीर एक बार फिर आपको लग रहा है कि भारत सरकार जिस तरह से हैंडल कर रही है उसका नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त होता जा रहा और एक तरह से पुराने हालात फिर से आने लग रहे हैं, ऐसा आप विजुलाइज कर रहे हैं?
देखिए, जो कश्मीर से रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि ये पहले से थोड़ा हालत खराब ही हुए हैं, थोड़े नाजुक हालत हैं, और उसकी तीन वजह हैं साहब। उसकी पहली वजह ये है कि इस पर जो इस वक्त हो रहा है उसके लिए आप पाकिस्तान को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, कुछ भी होता था तो पाकिस्तान का एक डायरेक्ट हाथ होता था, लोग पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग करके आए होते थे वगैरह वगैरह, पर वानी के साथ ऐसा कतई नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बार हमने देखा है कि जो लोग सड़क पर आए हैं और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग अपने चेहरे पर नकाब नहीं लगा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो खुलेआम कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि ये गुस्सा सिर्फ दिल्ली की ओर नहीं है, जैसे कि जब अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई उसके बाद गुस्सा दिल्ली की ओर डायरेक्टेड था, अब की बार गुस्सा श्रीनगर में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास है उसकी तरफ डायरेक्टेड है। एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है PDP का BJP के साथ जाने की वजह से, उस सेंस ऑफ बिट्रेयल वो सारी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को कश्मीर वैली में कंज्यूम कर रहा है, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, वो सब पार्टी एक ही तरीके से जनता देख रही है और उनको बहुत ही बुरी नजर से देख रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्रेडिबिलिटी शायद नहीं बची है कश्मीर के अंदर, मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी।
ये थे इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
विवादास्पद मुस्लिम उपदेशक साकिर नायक आज देश वापस आकर मंगलवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उनके दफ्तर के अनुसार वो फिलहाल देश वापस नहीं लौट रहे हैं। मंगलवार यानी कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई है। साकिर नायक इन दिनों सऊदी अरेबिया में हैं, जहां उनके दफ्तर के अनुसार वो उमरा करने गए हैं। वो वापस कब लौट रहे हैं? अपनी सफाई में वो सामने क्यों नहीं आते? जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
हाल में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे पर हुए चरमपंथी हमले के बाद साकिर नायक चर्चा में हैं। भारतीय मीडिया के अनुसार वो एजेंसियों के निशाने पर हैं। मुंबई में उनके दफ्तर के अनुसार इसी कारण वो देश वापस आकर अपना तर्क मीडिया के सामने रखने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो फिलहाल देश वापस नहीं लौटेंगे। उनके आलोचक कहते हैं कि उनके उपदेश से मुस्लिम युवा कट्टर इस्लाम की तरफ झुक रहे हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिन्हा कहते हैं,
आतंकवाद में श्रम का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जो लोग बंदूक और गोली चलाते हैं वो विचार नहीं करते हैं, उनके मन की मानसिकता को बदलने वाला कोई और होता है, वो बड़े मॉडरेट तरीके से खाद पानी डाला जाता है।
लेकिन उनके समर्थकों की भी कमी नहीं है। मुंबई में इस्लाम पर रिसर्च करने वाले अतीकुर रहमान कहते हैं,
कोई समझदार मॉडरेट मुस्लिम जो वहां पर और मेजॉरिटी वहां पर मॉडरेट मुस्लिम बैठा करते हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस में, वो कोई भी जो है ना वो सिर्फ दो मिनट की उनकी टेररिज्म की बात नहीं सुनता है, वो ओवरऑल पूरे लेक्चर को सुन के उसके ऊपर एक असर होता है। कहीं से कहीं तक आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं।
पिछले हफ्ते मुंबई में साकिर नायक के दफ्तर ने बीबीसी को बताया था कि वो सोमवार को देश वापस लौटेंगे और मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों के साथ रूबरू होंगे, लेकिन आज उनके दफ्तर से जो बयान आया उसमें कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी। इसके बाद मीडिया में उनके बारे में अटकलें फिर से बढ़ने लगीं और ये पूछा जाने लगा कि क्या वो देश वापस लौट रहे हैं या नहीं। उनके दफ्तर से जब हमने उनकी वापसी के बारे में पूछा तो जवाब आया कि उनकी वापसी की कोई तारीख तय नहीं है, फिलहाल वो सऊदी अरब में हैं और कुछ दिनों में अफ्रीकी देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समर्थक सैनिकों के बीच फिर से लड़ाई छिड़ गई है। राजधानी जूबा में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक उपराष्ट्रपति रिक मचार के घर पर हवाई हमले किए गए हैं। रिक मचार पूर्व विद्रोही नेता हैं जिन्हें हाल ही में दोबारा उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। मचार ने राष्ट्रपति सल्वा कीर पर आरोप लगाया है कि वो शांति समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ अमर शर्मा।
दक्षिण सूडान के उपराष्ट्रपति रिक मचार के सैनिक प्रवक्ता कर्नल विलियम गत्सियाथ ने बीबीसी को बताया कि उपराष्ट्रपति मचार और राष्ट्रपति सल्वा कीर के समर्थक सैनिकों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। सैनिक प्रवक्ता के मुताबिक 3 दिन की लड़ाई में सैकड़ों सैनिकों की मौत हो गई है और उनकी टुकड़ियां राजधानी जूबा की तरफ कूच कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति सल्वा कीर शांति समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। रिक मचार के समर्थकों का कहना है कि सरकारी समर्थन वाले सुरक्षा बलों ने राजधानी जूबा में उनके ठिकानों पर हमला किया है। दक्षिण सूडान की राजधानी में मौजूद एक स्वतंत्र पत्रकार रिचर्ड नियल ने बीबीसी को बताया कि सुबह के समय उन्होंने भीषण लड़ाई की आवाजों को सुना।
मैं जुबा के बीचों बीच मौजूद हूं, जहां सुबह 9 से 10 बजे के बीच तोप के गोलों और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कुछ घंटों पहले दो हमलावर हेलीकॉप्टर भी देखे। हवाई अड्डे के आसपास हिंसा लगातार जारी लगती है। सरकारी सेना के प्रवक्ता से मैंने बात की है, उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात विद्रोही शक्तियां हवाई अड्डे के आसपास की इमारतों पर कब्जा कर रही हैं।
हालांकि सूचना मंत्री मकई लियूथ ने युद्ध की खबरों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सुरक्षा बलों ने मचार के सैनिकों के हमले में जवाब में कार्रवाई की थी और अब स्थिति सामान्य है। हालांकि खबरों के मुताबिक मचार के प्रवक्ता ने सूचना मंत्री के दावों को खारिज किया है। शुक्रवार को लड़ाई में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय रेडियो स्टेशन तमाजूस के मुताबिक रविवार को लड़ाई में मरने वालों की संख्या 271 तक पहुंच सकती है। शुक्रवार की हिंसा सलवाकीर और रीक मचार के सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई गोलीबारी से शुरू हुई। जुबा में हिंसा की ताजा घटनाएं लड़ाई रोकने के संयुक्त राष्ट्र मिशन की अपील के बाद हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा है कि उसके परिसर में सैकड़ों लोगों ने शरण ली है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति समझौते के प्रति गंभीर नहीं होने के लिए दोनों पक्षों की निंदा की है और लड़ाई तुरंत रोकने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने मिशन के ठिकानों पर हमले के लिए विशेष तौर पर नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगर ये तय होता है कि दक्षिण सूडान में अतिरिक्त सैन्य बलों को भेजा जाना चाहिए तो इसके लिए क्षेत्र में स्थित अन्य देशों को तैयार रहना चाहिए। चीन की मीडिया के मुताबिक जुबा में चीन के 2 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक मारे गए हैं। कई शांति सैनिक घायल हुए हैं और साथ ही दोनों तरफ से जारी गोलीबारी में कई नागरिक फंस गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने दोनों पक्षों से कहा है कि अपनी समर्थक सेनाओं को काबू में रखें क्योंकि नागरिकों और यूएन परिसर में हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में भी गिने जा सकते हैं। दक्षिण सूडान में जुबा स्थित ऑक्सफैम के कंट्री हेड ज़लेटको गेजिक का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन हिंसा को रोकने में शक्तिहीन लगती है।
सड़कें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन हम लोग कभी कभार कुछ नागरिकों को सामान के साथ देख सकते हैं जो शहर के सुरक्षित इलाकों में शरण पाने की कोशिश करते हैं। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन पूरी तरह से शक्तिहीन और एक तरह से खुद ही पीड़ित नजर आता है, जो खुद के ठिकानों में बंद है और बाहर निकलकर नागरिकों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता।
20 महीने से जारी गृह युद्ध को रोकने के लिए 2015 में हुआ शांति समझौता हिंसा रोकने के लिए नाकाफी साबित हुआ है। दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और यह सूडान से आजादी की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है। दक्षिण सूडान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि स्वतंत्रता दिवस पर कोई सरकारी आयोजन नहीं हो रहा है।
दक्षिण सूडान में संघर्ष, ये बीबीसी है। आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और वंदना।
नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का
और मेरा वंदना का।
जो वंदना अभी तक हिंदुस्तान में नहीं थी, दुनिया जहान कहां कहां घूम रही थी।
पेरू से घूमकर आई हूं और वादा करती हूं कि डायरी जरूर पेश करूंगी।
बिल्कुल, अब आपने वादा कर दिया हमारे श्रोताओं के लिए। तो पेरू, जो लातिनी अमेरिका का एक बहुत ही सुंदर देश है, वहां से लौट के वंदना आई है और अभी फिलहाल चिट्ठियां आप कौन कौन सी पढ़ रही हैं? मैं देख रहा हूँ बड़ा उत्साह है आपके चेहरे पे।
चिट्ठी है, धमकी समझिए इसको।
ये बीबीसी को धमकी?
जी, बीबीसी को धमकी। नाम है इनका पूजा कुमारी उर्फ अंशु कुमारी, गांव पांडेपुर, पोस्ट निमेश, थाना बरहमपुर, जिला बक्सर, बिहार से।
ये पता तो बहुत ही जाना पहचाना सुनाई पड़ रहा है, लेकिन नाम जो आपने कहा पूजा कुमारी उर्फ अंशु कुमारी, ये पहली बार सुना है।
बिल्कुल, दोनों आपने एकदम सही पकड़ा है। पहले धमकी बता देती हूँ क्या बोला है इन्होंने कि अगर मेरी चिट्ठी शामिल नहीं की तो देख लीजिएगा, मैं आगे कभी पत्र नहीं लिखूंगी।
अरे भाई पूजा कुमारी, पहले तो इसी मुद्दे पर बात हो जाए, आपने चिट्ठी लिखी है पहली बार और पहली बार आप ये धमकी भी दे रही हैं कि अगर शामिल नहीं हुई तो मैं आगे से कभी नहीं लिखूंगी।
भाई ये प्यार भरी धमकी, सुन लीजिए। आपको जाना पहचाना पता इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके भैया आशुतोष कुमार पांडे, वो हमें पत्र लिखते हैं।
अच्छा, मैं समझ गया, जो हमारे बीबीसी स्टूडियो भी आए थे अभी कुछ समय पहले और ये बक्सर में रहते हैं और बीबीसी के लगातार श्रोता हैं और टिप्पणियां भी करते हैं, तल्ख भी करते हैं टिप्पणियां और मीठी टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन पूजा कुमारी आगे क्या लिखती हैं?
जी, इनकी बहन है तो ये कहती हैं कि आप वैसे तो कहते रहते हैं कि लड़कियां महिलाएं पत्र लिखें और मेरे साथ ये भेदभाव।
अरे भाई, नहीं हो रहा है भेदभाव, आपका कार्यक्रम में पत्र शामिल हो चुका है। अब आप अगला पत्र जो लिखें वो हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपना विश्लेषण, अपनी राय, टिप्पणी लिखेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
जी, इन्होंने हालांकि लिखा है कि आदेश कुमार गुप्त जो समाचार वो देते हैं, खेल समाचार, वो इनको काफी पसंद आते हैं। कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि तमाम खेलों की खबरें जुटाना आसान काम नहीं है।
जी बिल्कुल, मेहनत का काम तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, तो अगला जो ईमेल है वो है सिरसा हरियाणा से सुभाष वर्मा का।
जी,
इन्होंने कहा है कि नमस्कार, भारत में दिलनवाज पाशा ने जो समाचार पढ़े उसमें बुरहान वानी के लिए सम्मानीय शब्दों का प्रयोग किया जो इन्हें पसंद नहीं आया।
और क्या लिखते हैं, क्या क्यों, क्यों
इन्हें
पसंद
कहना
नहीं
है कि ये बीबीसी के इस्लामीकरण का द्योतक है।
सुभाष वर्मा साहब, बुरहान वानी जो कश्मीर में मिलिटेंट या चरमपंथी मारे गए हैं, उनके बारे में आपका ये खत है, चिट्ठी है। दरअसल अगर आप गौर से कार्यक्रम सुनते हों तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बीबीसी तू तड़ाक की भाषा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, और ये शायद बीबीसी की संस्कृति में नहीं है कि किसी के लिए भी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। बाकी जजमेंट हम नहीं करते हैं, किसी पर हम ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, उनके कामों से खुद जाहिर होता है कि वो अच्छा है या बुरा है, और आप उसका जज करते हैं।
हमारा काम घटना अच्छा चक्र
को सामने रख देना है, इसलिए आपको ये लगता है। लेकिन जहां तक बीबीसी के इस्लामीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी में कहा था, किसी हमारे श्रोता ने कहा था कि आप बहुत सेक्युलर हो रहे हैं। मैंने कहा था हम किसी धर्म को न तो ऊपर उठाते हैं न ही किसी धर्म को नीचे दबाते हैं, उस सेंस में ज़रूर धर्म निरपेक्ष हम हैं
जी। एक और शिकायत अगर मैं लेना चाहूँ, दिलावर हुसैन कादरी जैसलमेर राजस्थान से इन्होंने पोस्टकार्ड भेजा है, और इनकी शिकायत है कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि बीबीसी जो है वो सांप्रदायिक विद्वेष के दरिया में गोता लगा रहा है। इसकी वजह ये है कि इंडिया बोल में इनसे कहा गया था कि इनका फ़ोन लेंगे, लेकिन वो नहीं ले पाए कार्यक्रम।
दिलावर हुसैन कादरी साहब, आपका नाम इतना जाना पहचाना है, आपकी चिट्ठियां इतनी बार शामिल हुई हैं, और आप पुराने श्रोता हैं, फिर भी ये आपको लगा कि सांप्रदायिकता में गोते लगा रही है बीबीसी क्योंकि आपका फोन नहीं लगा। भाई बात कुछ जमी नहीं दिलावर साहब, अगली बार चिट्ठी लिखिए, अगली बार इंडिया बोल में शामिल होइए और अपनी बात कहिए, आपका ये शक दूर हो जाएगा।
जी बिल्कुल। और अगला जो पोस्टकार्ड है वो है कुशकेतु मिश्र का, ये दरभंगा से लिख रहे हैं, और इन्होंने, इनको बहुत पसंद आया वो जो पूरा कार्यक्रम था यूरोपियन यूनियन से अलग होने का, जो ब्रिटेन का
जिसको बोलते
और
हैं।
उसके कई सारे पहलू समझाए गए कार्यक्रम में, आपने प्रस्तुत किया था
जी।
तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी चीजों से लोग वंचित रह जाते
ये
हैं।
कहां
तो,
से लिखा है इन्होंने
जी, इन्होंने लिखा है विलेज पटोर डिस्ट्रिक्ट दरभंगा,
दरभंगा से, बिहार से जी। बहुत जी। बहुत धन्यवाद कुशकेतु जी, आपकी चिट्ठी लगातार मैं कई बार नहीं देखता हूँ, ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चिट्ठी लिखी, अगली बार भी आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा
जी।
साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ वंदना जी कि समय हुआ समाप्त, मैं पता बताता हूँ अपने श्रोताओं को और लेते हैं विदा। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
आज से शुरू हो रही है हमारी डॉक्टरों और अस्पतालों पर खास सीरीज। अपने आसपास आपने ऐसे मामले ज़रूर सुने होंगे जिसमें व्यक्ति अस्पताल गया लेकिन किसी डॉक्टरी चूक या मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार हो गया। भारत में मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले बढ़ रहे हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनमें मरीज डॉक्टरी चूक के कारण मौत तक के शिकार हो रहे हैं। इसी पर आज से शुरू हो रही है खास सीरीज। सुनिए विनीत खरे की रिपोर्ट, जो शुरू हो रही है गीता दीवान की कहानी से, जिनकी एक बच्ची पैदा होने के बाद ही उन्हें बताए बिना उनकी ओवरीज निकाल ली गई।
ये आवाज़ है गीता दीवान की, जो 8 साल पहले तक एक शो का 2 लाख रुपए तक कमा लेती थी। एक दिन वो महिलाओं से जुड़ी किसी समस्या के इलाज के लिए लुधियाना की डॉक्टर अमित सोफट और डॉक्टर रमा सोफट के क्लिनिक पहुंची।
एडमिट किया मुझे और कहते हैं तू तो बेटा 2 दिन के अंदर बिल्कुल भागती फिरेगी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, एक माइनर सा प्रोसीजर है, हम वो करेंगे और तू ठीक हो जाएगी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मेरे होश उड़ गए जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी हमने ये निकाल दिए हैं, दोनों ओवरीज निकाल दिए हैं और यूट्रस भी निकाल दिया है। ओवरीज के बारे में मुझे पता ही नहीं था क्या चीज़ होती है, तो कहते उसको कि आप इसको लैब टेस्ट करवा के लाओ।
रोहतक के कलानौर में रह रही गीता दीवान के पति ने उनको छोड़ दिया है, इलाज में सारी जमीन जायदाद बिक गई है। जाँच के लिए बने डॉक्टरों के एक बोर्ड ने डॉक्टर रमा सोफट के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि डॉक्टरों ने मेडिकल कारणों के अलावा दूसरे कारणों के लिए ये कार्रवाई की है। उधर डॉक्टर अमित सोफट किसी भी लापरवाही से इनकार करते हैं।
We have done everything by the book. Nobody could touch us. That is why we are free. And if
डॉक्टर अमित कह रहे थे कि हमने सब कानून के हिसाब से किया, कानून के हिसाब से मरीज को मेडिकल काउंसिल जाना चाहिए था, वो हमसे पैसे मांगती रहीं और पुलिस के पास इस बात की शिकायत दर्ज है। वर्ष 2013 के एक शोध के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 4.3 करोड़ लोग मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण दुर्घटना का शिकार होते हैं। रिपोर्ट में पहली बार ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण हुई दुर्घटना में कितने साल की मानवीय जिंदगी का नुकसान होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में रिपोर्ट के लेखक आशीष झा ने बताया कि भारत में हर साल करीब 30 लाख साल की स्वस्थ जिंदगी मेडिकल चूक का शिकार होती है। हालांकि जानकारी के अभाव में ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। स्वास्थ्य मामलों पर काम करने वाले प्रवीण डांग के मुताबिक डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई के लिए नियामक संस्था तो है, लेकिन डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते।
जब मैंने पहली बार किसी डॉक्टर की इस मामले में कंप्लेंट की थी तो मुझे तकरीबन 15 दिन में उनका जवाब आ गया था। उन्होंने स्टेट काउंसिल को उस पर कार्रवाई के लिख दिया था और उसमें टाइम बाउंड कंडीशन रखी थी 6 महीने की, पर आज उस बात को 3 साल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है अभी जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर लोगों को सस्ता, तर्कसंगत और कानूनी बढ़िया इलाज देने की जिम्मेवारी है, उनका झुकाव दवाई कंपनियों की तरफ है, डॉक्टरों द्वारा बनाए जा रहे पैसे की तरफ है।
भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं खस्ता हाल होने के कारण निजी अस्पतालों का 80% बाजार पर कब्जा है। आरोप लग रहे हैं कि कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन के कारण निजी अस्पतालों के जवाबदेही की भारी कमी है। डॉक्टर अरुण गद्रे और डॉक्टर अभय शुक्ला ने अपनी किताब डिसेंटिंग डायग्नोसिस में निजी अस्पतालों के भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। निजी अस्पतालों में पैसे हड़पने के लिए लोगों को बीमारी के नाम पर डराया जाता है, उन्हें वो टेस्ट करने को कहा जाता है या फिर उन पर वो सर्जरी और ऑपरेशन किए जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। साथ ही डॉक्टर गद्रे और डॉक्टर शुक्ला ने डॉक्टरी पेशे में कमीशन के चलन की चर्चा की है। इसके बावजूद दुनिया के कोने कोने से लोग इलाज के लिए भारत पहुंच रहे हैं और कई खुश होकर वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन नाइजीरिया की चिनेये का मामला अलग है। अगस्त 2015 में एक दुर्घटना में चोटिल हुए पांव का इलाज करवाने दिल्ली आई चिनेये को फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। अक्टूबर में उनकी मृत्यु हो गई। चिनेये को लेकर सोशल मीडिया, ब्लॉग आदि में लिखा गया, लेकिन चिनेये के परिवार के मुताबिक उन्हें फोर्टिस अस्पताल ने आज तक नहीं बताया कि चिनेये की मौत आखिर कैसे हुई। कनाडा से बात करते हुए चिनेये की बहन एनकीरू ऑन वुगालू ने आरोप लगाया कि चिनेये की मृत्यु मेडिकल लापरवाही का मामला है।
I would never advise anybody to come to India. I won't. The hospital is not responding, which is the height of inhumanity.
मैं किसी को भी भारत आने की सलाह नहीं दूंगी। अस्पताल कोई जवाब नहीं दे रहा। ये क्रूरता की इंतहा है। अगर अस्पताल का दावा है कि उनके पास रिपोर्ट नहीं है और सिर्फ पुलिस के पास ये रिपोर्ट है, अस्पताल को मौत के कारणों का कैसे पता चलेगा? वो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कैसे कदम उठाएंगे?
उधर फोर्टिस अस्पताल ने बीबीसी को भेजे एक बयान में कहा,
प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारियों ने एक स्वतंत्र ऑटोप्सी की, वो भी सरकारी केंद्र में, ताकि मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके। इस मामले में हमने आंतरिक समीक्षा भी की थी जाने माने कंसल्टेंट्स द्वारा, जिसमें पाया गया कि हमारे डॉक्टरों ने मरीज के हित में काम किया और उनके अप्रोच एवं रिस्पॉन्स में कहीं कोई कोताही नहीं थी।
एनकीरू ऑन विगालू इस बयान से असहमत हैं। उधर गीता दीवान का कहना है कि एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्हें उम्मीद दिलाते हैं वो पुराने म्यूजिक वीडियोस जो उनकी 14 साल की बेटी उनके ही पुराने लैपटॉप पर देखती रहती हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद तनाव बरकरार है। केंद्र सरकार 800 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवान कश्मीर भेजेगी। शुक्रवार से अब तक हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई है। आज कश्मीर में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई और एक सैनिक एयरबेस पर हमला किया गया। दक्षिण सूडान में उपराष्ट्रपति रेक मचार और राष्ट्रपति सलवा कीर के समर्थक सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। 5 दिन की लड़ाई में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। पुर्तगाल के एक
सैनिक मालवाहक विमान हरक्यूलिस C-130 में रनवे पर आग लग गई। हादसे में 3 क्रू सदस्यों की मौत हो गई और 4 घायल हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की नेता की दौड़ से आंद्रेया लेडसम हट गई हैं। अब पार्टी की नेता और देश की अगली प्रधानमंत्री के तौर पर ब्रिटेन की गृह मंत्री टेरेसा मे के नाम की पुष्टि होने की संभावना है। बीबीसी समाचार
दिन भर को यहीं समाप्त करते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की देवशीष कुमार ने। रिहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।